हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। दिव्याना जोर से चिल्लाई। वही उसकी सच्चाई खुलने की बात सुनकर वो सब भी हैरान खड़े थे। विधिक की बात सुनकर मेलिसा के चेहरे पर स्माइल थी। वेरी गुड विधिक, मुझे पता था कि तुम मुझे बाहर निकलवाने के लिए प्लेन रेडी रखोगे, मेलिसा ने तेज आवाज में कहा। दुआ करना कि उसी एजेंसी में ही तुम्हारी जान चली जाए, वरना अगर बाहर निकली तो उनसे भी दर्दनाक मौत नसीब होगी तुम्हें मेरे हाथों, विधिक ने दिव्याना के बाल छोड़कर कहा। तुम चाहते क्या हो, उसे छोड़ दो, मिस्टर दत्त ने धीमी आवाज में कहा। उनकी बात सुनकर विधिक हंसने लगा। उसकी हंसी काफी खतरनाक थी, जो किसी के दिल में भी दर्द पैदा कर दे। अचानक वो हंसते हुए रुका और गंभीर आवाज में कहा, तुम लोगों को नहीं पता मुझे क्या चाहिए, जो भी कहना है सीधे सीधे कहो, यूं पहेलियां मत पुछाओ, मिस्टर दत्त ने गुस्से में पूछा। ठीक है फिर, सीधे सीधे सुन लो, मुझे मेरी बटरफ्लाई चाहिए, एक हाथ दे और दूसरा हाथ ले, जिस वक्त मेरी बटरफ्लाई मेरे पास होगी मैं इस लड़की को जाने दूंगा। अपनी बात कहकर विधिक ने मिस्टर दत्त के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और कॉल कट कर दिया। मेलिसा को एक बार के लिए वहीं छोड़कर पूरी टीम मीटिंग रूम में थी। वही अमन भी मौजूद था। उसने विधिक और मिस्टर दत्त की पूरी बातचीत को सुना था। वो इंसान साइको है, हमें आंशी को उस तक पहुंचाना ही होगा, वरना वो नहीं रुकने वाला, लावण्या ने चिल्लाकर कहा। वो दिव्याना को लेकर परेशान हो रही थी। एक बात तो श्योर है कि आंशी के मिलने तक वो दिव्याना को नहीं करेगा, उसे आंशी चाहिए और हमें उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाना होगा। सबसे पहले हम इस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकेंगे, उसके बाद ही आगे सोचेंगे, आंशी को उसे तक पहुंचना है या नहीं, आगे इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। मिस्टर दत्त ने अपना ऑर्डर दे दिया था, वो भी इस वक्त काफी गुस्से में थे। वो वहाँ से वापस कमरे में चले गए तो वहीं अमन भी अब वहाँ नहीं रुका और गाड़ी लेकर सीधा अपने घर जाने के लिए निकल गया। अमन ने घर पर 3 दिन की आउटिंग पर जाने का बहाना बनाया था, उसके बावजूद वो घर आ गया था। वो घर पहुंचा तब सुबह के 7 बज रहे थे। तेजो जी और चेतना जी गार्डन की खुली हवा में योगा कर रही थीं। अमन उनके पास जाकर बैठ गया। योगा करते हुए चेतना जी ने बीच में आंखें खोली, उन्हें पास में अमन दिखाई दिया तो उन्होंने उसके पैर पर अपने हाथ से मारा और हल्के गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती ना तुझे बिल्कुल भी, अपने न्यूली मैरिड वाइफ जिससे तुमने लव मैरिज की है उसे अकेले छोड़कर बाहर अकेले आउटिंग के लिए चले गए। उनकी बातें सुनकर तेजो जी ने भी तुरंत आंखें खोली। उन्होंने अमन की तरफ घूर कर देखा और कहा, चेतना बिल्कुल ठीक कह रही है, उसी यहाँ लेकर आए थे तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आई एम रियली अपसेट विद यू, कभी सोचा है तुम्हारे बिना वो कितना लोनली फील करती है। चेतना जी और तेजो जी दोनों ही अमन को डांटने लगे। वो पहले ही मिस्टर दत्त की बातों से परेशान था। मैं यहाँ घर डांट सुनने के लिए नहीं आया हूँ, थोड़ा परेशान था तो सोचा घर आकर रिलैक्स फील होगा, पर आप दोनों तो मुझे, बोलते हुए अमन रुक गया। वो इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं था, इसलिए उसने बातचीत का रुख बदलते हुए आगे कहा, आंशी कहाँ है, वो सो रही है, चेतना जी ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर अमन के चेहरे पर हंसी के भाव थे। इतनी परेशानी में भी एक पल के लिए वो सब कुछ भूल गया। उसने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, मुझे अच्छे से दिख रहा है उसे कितना लोनली फील हो रहा है, बस भीकर मैंने ही उसे लेट उठने के लिए कहा था, चेतना जी ने जवाब दिया। हाँ, वो इस घर में घुल मिल जाए तो अच्छा है, उसके साथ एक अटैचमेंट फील होता है, जबकि बहुत कम वक्त से हम उसे जानते हैं, लगता ही नहीं कि वो इस घर में नहीं आई है, तेजो जी ने कहा। तो वहीं उनकी बात सुनकर चेतना जी भी उनकी बात पर सहमति जताई। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही बीजी आपने, जब पहली बार उससे मिली थी तभी समझ गई थी कि उसकी लाइफ में एक अलग ही खालीपन है। याद है पहली भी वो तुम्हारे साथ आई थी तो उसे घर से भेजने का मन ही नहीं कर रहा था। तेजो जी और तेजो जी के दिमाग से आंशी से जुड़ी यादें धुंधली हो चुकी थी, लेकिन मिस्टर दत्त के बताने के बाद अमन को सब याद आ चुका था। वो तेजो जी और तेजो जी के अटैचमेंट का कारण भी समझ पा रहा था। क्या आप दोनों को भी कुछ याद नहीं है, अचानक अमन ने पूछा। क्या याद नहीं है, क्या हम उसे पहले से जानते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, चेतना जी ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए पूछा। उन्होंने तेजो जी की तरफ देखा तो उन्होंने भी ना में सिर हिला दिया, उन्हें भी कुछ याद नहीं आ रहा था। याद है बहुत साल पहले डैड अपने साथ एक बच्ची को घर लेकर आए थे, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, उसने अपनी मॉम को मरते हुए देखा था, लगभग 1 महीने तक वो हमारे घर पर भी रही थी, वो लड़की कोई और नहीं आंशी ही है। अमन ने बताया। एक पल के लिए तो चेतना जी और तेजो जी को उसके बात पर यकीन नहीं हुआ। क्या सच में? हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, उसका नाम भी आंशी ही था, तभी मैं सोचूं कि उससे इतना अटैचमेंट क्यों फील होता है। चेतना जी बोली, किस्मत भी कितनी अजीब होती है, जिनके साथ में रिश्ते जुड़े होते हैं वो किसी न किसी तरीके से वापस मिल ही जाते हैं। उस वक्त किसने सोचा था कि वही आंशी हमारे घर पर बहू बनकर आएगी, तेजो जी ने मुस्कुरा कर कहा। फिर उन्हें कुछ याद आया तो वो अमन को परेशान करने के लिए बोली, एक बात तो सच है, इतने सालों में कुछ नहीं बदला। अमन, तुम बचपन में भी उससे इरिटेट हो जाया करते थे, तुम्हारी चेतना से यही शिकायत रहती थी कि वो तुमसे ज्यादा आंशी से प्यार करती है। वैसे मेरी शिकायत अभी भी वही है, आप दोनों उसका बहुत फेवर करते हो। कम ऑन, एक अच्छी सास बनिए और उसे टाइम पर उठाया कीजिए, वो लड़की बहुत लेजी है। जैसे ही अमन ने कहा, चेतना जी उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। हाँ हाँ ठीक है, मेरी ही गलती है, कहकर अमन वहाँ से उठकर जाने को हुआ। तभी वो रुका और उनकी तरफ मुड़कर धीमी आवाज में कहा, मॉम, आप उसे इस बारे में बात मत कीजिएगा, शायद वो अपनी जिंदगी के उस हिस्से को भूल गई है, वो ये सब याद ना करें, उसी में उसकी भलाई है, वो टाइम उसके लिए बहुत मुश्किल रहा था, ये हमसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। चेतना जी और तेजो जी दोनों ही उसकी बात से सहमत थे, उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। तो वहीं अमन उनसे बात करने के बाद अब आंशी के पास जा रहा था। शर्मिंदा और इविल आंशी कल आएगा, तब तक इसी को पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। मेलिसा के सीन ज्यादा हार्ड नहीं है, पाठ पढ़कर समीक्षा जरूर करिएगा।